प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। क्वींसलैंड में 3 लोगों को गोली मारने के बाद कथित अपराधी पुलिस हिरासत में। वृद्ध देखभाल में 4th कोविड वैक्सीन खुराक की संख्या पर जारी नया डेटा। और खेल में बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को नशीली दवाओं के आरोप में जेल की सजा। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी क्वींसलैंड में एक ग्रामीण संपत्ति पर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति पुलिस हिरासत में है। क्वींसलैंड पुलिस ने पुष्टि की है कि कथित बंदूकधारी उन 3 लोगों में से एक है जिन्हें वर्तमान में गुप्तचरों ने पकड़ा है। कार्यवाहक अधीक्षक टॉम आर्मिट कहते हैं कि अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है और हत्याओं का एक संभावित मकसद अभी तक दृढ़ता से स्थापित नहीं हुआ है। माना जाता है कि कथित बंदूकधारी शूटिंग पीड़ितों का पड़ोसी है जो एक ही परिवार का हिस्सा है, और चौथा व्यक्ति जो गोलीबारी में बच गया और एक स्थिर लेकिन गंभीर स्थिति में अस्पताल में है। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जापान की अपनी यात्रा पर नए सिरे से आश्वासन जारी करते हुए कहा है कि चीन ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकेगा। ये तब आता है जब पेलोसी इस क्षेत्र की यात्रा के बाद ताइवान के आसपास के पानी में कम से कम 11 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया। सुश्री पेलोसी ने जोर देकर कहा कि एशिया में अमेरिकी प्रतिनिधित्व ताइवान में यथास्थिति को बदलने के बारे में नहीं है, और बताया कि उन्हें लगता है कि चीनी शायद सैन्य अभ्यास करने के लिए बहाने के रूप में उनकी यात्रा का उपयोग कर रहे हैं।
The Chinese have tried to isolate Taiwan, keeping them most recently from the World Health Organization by not even letting their participation be on the agenda of the World Health Agency, whatever that makes these determinations. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there.
इस बीच प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने एबीसी रेडियो से बातचीत करते वक्त बताया है कि ताइवान पर ऑस्ट्रेलिया के विचार अमेरिका जैसे ही हैं और ऑस्ट्रेलिया का अपना विचार बदलने का कोई इरादा नहीं है।
We need to stay the course that we're on, which is to seek cooperation and positive relations with China where we can, but stand up for Australian values and Australian national interests where we must.
ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बाउन कहते हैं कि अपतटीय पवन क्षेत्र अधिक रोजगार सृजित करने में मदद करेंगे। फेडरल सरकार विक्टोरिया में गिप्सलैंड के तट पर और न्यू साउथ वेल्स के हंटर और एलवारा क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा के संक्रमण में मदद करने के लिए पवन खेतों का प्रस्ताव कर रही है। श्री बाउन कहते हैं कि अक्षय ऊर्जा केंद्र ऑस्ट्रेलिया को अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे।
This is good news for these communities. A lot of jobs will be created. And these are areas undergoing economic change as our energy system transforms. Just looking at those areas, whether it be the Hunter Valley or the Illawarra or the area of Portland, for example, these are areas that are undergoing very significant jobs changes and economic change.
उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रस्तावित परियोजनाएं 3,000 से 8,000 तक की नौकरियां पैदा करेंगी। उत्तरी मेक्सिको में एक ढह गई कोयला खदान में फंसे 10 लोगों को बचाने के प्रयास में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। बचाव कर्मी बाढ़ की खदान से पानी निकालने के लिए काम कर रहे हैं और 6 विशेष बलों के स्कूबा गोताखोरों के आज खदान में प्रवेश करने की उम्मीद है, लेकिन अधिकारियों ने खनिकों के साथ किसी भी संपर्क की सूचना नहीं दी है। ये दुर्घटना बुधवार को पानी से भरी खदान में एक पड़ोसी क्षेत्र को तोड़ने के बाद हुई थी। माना जाता है कि ये लोग 200 फुट गहरे 2 खानों के बीच हैं, जिनमें आधे से ज्यादा पानी से भर गया है। अमेरिका में एक जूरी ने कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट एलेक्स जोन्स को 2012 के सामूहिक स्कूल की शूटिंग को झूठा दावा करने के हर्जाने में $5.8 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है। सैंडी हुक शूटिंग में 26 बच्चों और 6 वयस्कों की मौत हो गई। जो जोन्स ने बार बार तर्क दिया कि अमेरिकियों से बंदूक के स्वामित्व के अधिकारों को छीनने के लिए सरकार द्वारा आयोजित एक धोखा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि मृत बच्चों के माता पिता अभिनेता थे। पीड़ितों में से एक के माता पिता ने इन्फोवॉर्स के संस्थापक से कम 215 मिलियन डॉलर की मांग की थी। रूस के साथ एक समझौते में स्थापित समुद्री मानवीय गलियारे के माध्यम से माल ले जाने के लिए 3 जहाजों के आज यानी शुक्रवार 5 अगस्त को यूक्रेन में बंदरगाहों से निकलने की उम्मीद है। जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर का कहना है कि उन्होंने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के तहत कॉरिडोर के माध्यम से सिर्फ 58,000 टन मकई ले जाने के लिए कोर्नोमोर्स्क से 2 और ओडेसा से 1 नाव को अधिकृत किया है, लेकिन पता चलता है कि अभी भी वाणिज्यिक जहाजों की आवश्यकता है जो फरवरी से यूक्रेनी बंदरगाहों में फंसे हुए हैं। ये जहाज निकलने पर और जहाजें अपने पूर्व निर्धारित गंतव्यों पर जा सकेंगी और वैश्विक बाजारों में आहार पहुंचाया जा सकेगा। वृद्ध देखभाल में टीकाकरण पर प्रकाशित जानकारी के पहले दौर के डेटा से पता चलता है कि केवल 48% आवासीय घरों में कम से कम 80% निवासी पूरी तरह से टीकाकृत है। आपको बता दें, पूरी तरह से टीकाकरण का मतलब है कि एक स्वीकृत कोविड-19 वैक्सीन की 4 खुराक लेना। डेटा दिखाता है कि 16% घरों में 50% से कम निवासियों ने पूरी तरह से टीकाकरण किया है, जबकि 36% घरों में 50-80% टीकाकरण दर है। वृद्ध देखभाल मंत्री एनिका वेल्स द्वारा अधिक आवासीय सुविधाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र पर आधिकारिक जानकारी प्रकाशित करने के निर्णय के बाद ये आंकड़े जारी हुए। न्यू साउथ वेल्स राज्य की बाढ़ प्रतिक्रिया की जांच के बाद शेन फिट्सिमन्स के भूमिका को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद राज्य के एक पूर्व मंत्री उनके बचाव में सामने आए हैं। इस साल की शुरुआत में राज्य भर में घातक और विनाशकारी बाढ़ के लिए रेजिलियंस न्यू साउथ वेल्स की प्रतिक्रिया का व्यापक आलोचना के बीच स्वतंत्र जांच ने कथित तौर पर एजेंसी फिट्सिमन्स को घायल करने की सिफारिश की है, लेकिन पूर्व बीगा सांसद और राज्य सरकार के परिवहन मंत्री एंड्रयू कॉन्स्टेंस कहते हैं कि उनका श्री फिट्सिमन्स के साथ एक बॉन्ड बन गया जब वे ब्लैक समर बुशफायर के दौरान न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस कमिश्नर थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि फिट्सिमन्स को अपनी नौकरी नहीं गंवानी चाहिए।
Having just seen reports about Shane Fitzsimmons, I mean, for goodness sake, I mean, this is a bloke who saved lives, was there for my community and our state during Black Summer, and I think he deserves a little bit better than this, guys.
जॉन बारलारो के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ने एक संसदीय तहकीकात को सबूत देना शुरू कर दिया है, जिसमें एक आकर्षक विदेशी व्यापार नौकरी के लिए उनके पूर्व बॉस की नियुक्ति की जांच हो रही है। जांच के लिए अपने शुरुआती बयान में शावन हैमलिन ने कहा कि न्यूयॉर्क व्यापार आयुक्त पद के लिए भर्ती होने के दौरान उन्होंने ना कुछ देखा या सुना। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकार की कोविड प्रतिक्रिया की देखरेख करने में मदद करने की थी और इसलिए भर्ती प्रक्रिया में उनकी भागीदारी गौण थी। और सुश्री हैमलिन ने कहा कि उस क्षमता में चौंकने का कोई कारण उन्हें नहीं देखा।
Mr. Barilaro never raised with me any personal interest in these roles. Any request from Mr. Barilaro for information or instructions, I understood to be in the sole capacity as Minister responsible for trade. Had I had reason to believe at any time that any steps or actions taken relating to the State Trade and Investment Commissioners would benefit Mr. Barilaro personally, I would have no issues escalating the matter and, if necessary, make representations to the appropriate independent bodies.
अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 70 सेंट है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 55.07 रुपये हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। बास्केटबॉल में रूस में ड्रग्स के आरोप में WNBA स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को जेल में डाले जाने पर अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। फरवरी में मॉस्को हवाई अड्डे पर अधिकारियों को उनके सामान में कैनबिस तेल मिलने के बाद ग्राइनर को 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ग्राइनर को रिहा करने और उसे घर लाने के बातचीत में व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। मॉस्को में अमेरिकी दूतावास में मिशन की उप प्रमुख एलिजाबेथ रूड भी इस फैसले को गलत न्याय कहकर ग्राइनर की रिहाई के लिए जोर दे रही है।
The US Department of State has determined that Ms. Greiner was wrongfully detained. Nothing in today's decision changes that determination. We will continue to be closely engaged in this case. We will remain in frequent contact with Ms. Greiner and with her legal team.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में भी बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 9 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। मेलबर्न में भी बारिश की संभावना रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। कैनबेरा में एक या दो बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक रहेगा। सिडनी में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। ब्रिस्बेन में सुबह एक या दो बौछार हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश हो सकती है और वहां का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।